नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। क्या हम भय में नहीं जी रहे हैं? और इसकी तस्दीक भारत का रक्षा बजट में बढ़ोतरी से लेकर पश्चिमी देशों के साथ ट्रेड डील करना यानी सैन्य क्षमता बढ़ाने के साथ साथ आर्थिकी को और खोलना है। ऐसे में सवाल यही कि ऐसा क्यों? कॉलम अपन तो कहेंगे में इस बार मेरे विचार का शीर्षक है, वह सनातन चरित्र कहां जो भारत बने। देश इन दिनों सत्य शोध की कोयला खदान है, जिससे यदा कदार निकले चमकीले कण दिमाग और बुद्धि को खदबदा देते हैं। हाल में रक्षा बजट में 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की बढ़ोतरी की खबर थी। भारत 2026-2027 में 2.19 लाख करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण खरीदेगा। ऐसे ही यूरोपीय संघ के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से व्यापार समझौते की सुर्खी है। मतलब जहां सैन्य क्षमताओं में बढ़ोतरी का कदम, वहीं भारत की आर्थिकी का खुलना। कभी मोदी सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे अरविंद सुब्रमण्यम ने लिखा है कि अब भारत विश्व की सर्वाधिक खुली आर्थिकी होने के कगार पर है। बहुत अच्छा, पर ये फैसले भारत की मजबूरी से हैं या ठोस संकल्प से हैं? आखिर चीन से हारने के बाद सैन्य ताकत का विस्तार तो नेहरू के समय में ही शुरू हो गया था। फिर लाल बहादुर शास्त्री ने मुंबई में ट्रॉम्बे में एटमी भट्टी का शिलान्यास किया। इंदिरा गांधी ने परमाणु परीक्षण कराया। नरसिंह राव ने परमाणु बम मिसाइलें बनवाई तो वाजपेयी ने बिना आगे पीछे सोचे पोखरण में 5 परीक्षण कर दुनिया को बताया आज बुद्ध पूर्णिमा है। ऐसे ही नरसिंह राव ने आर्थिकी खोली, मनमोहन सिंह ने उससे भूमंडलीकरण साधा, तो ट्रंप के झटकों के बाद भारत अब उनकी शर्तों पर व्यापार समझौता किए हुए है। सर्वाधिक खुली आर्थिकी के जुमले बन रहे हैं तो स्वाभाविक सवाल है, खुलने से हम बाजार बनेंगे या समर्थ आत्मनिर्भर होंगे या आश्रित? यह मानना तो मूर्खता ही होगी जो सोचे कि चीन डरकर लद्दाख अरुणाचल से निगाह हटा लेगा या पाकिस्तान की कश्मीर से नजर हट जाएगी। हकीकत है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद वैश्विक सैन्य जगत में भारत की जो किरकिरी हुई, उसने मोदी सरकार को सैन्य खर्च बढ़ाने के लिए मजबूर किया है। ऐसे ही अमेरिका और यूरोप के साथ व्यापार करार भी भयाकुल मनोदशा में है। यही कलयुगी हिंदुओं का वह इतिहास जनित डीएनए है, चरित्र है, जिसमें मुझे कोयला खदान का बिंब झलकता है। कोई 3 दशक पहले मैंने झारखंड घूमते हुए कोयला खदान के मुहाने के घने काले परिवेश में काली धूल में लथपथ जीवन महसूस किया था। मिट्टी, मजदूरी, झोपड़ियां, मजदूर, इंफ्रास्ट्रक्चर सब काली धूल में लथपथ थे, मानो शनि का घर। फिर घूमते घूमते कोल इंडिया, स्टील इंडिया के सरकारी प्रतिष्ठान बोकारो का स्टील प्लांट देखा समझा तो दिमाग बुरी तरह खदबदाया। मेरी इस सोच को बल मिला कि नेहरू के समाजवाद, लाइसेंस, कोटा परमिट और अंग्रेज विरासत ने सब गुड़गोबर किया है। अर्थात मुस्लिम मुगल लुटेरों शासकों से जहां हिंदुस्तान खेतिहर पैदावार हस्तशिल्प की उत्पादकता व्यापार में लूटा, तो अंग्रेज हुक्मरानों ने लगान लूट के अलावा खदानों, कच्चे माल, व्यापार यानी कोयले की दलाली के काले हाथों में हिंदुस्तानियों को रंगा। लुटेरे जगत सेठ पैदा किए। वही दिशा स्वतंत्रता के बाद प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू से बनी। उन्होंने पुराने अंग्रेज मॉडल की विरासत की नींव पर आइडिया ऑफ इंडिया गढ़ा। ऐसा समाजवाद अपनाया जो सत्ता द्वारा सत्ता के खातिर सत्ता की लूट का तंत्र विकसित करने वाला था। नतीजतन भारत के लोग पावरफुल नागरिक बनने की बजाय और अधिक हुकुम के बंधुआ कानूनों में बंधे माई बाप सरकार पर आश्रित हुए। नौकरशाही ने समाजवाद के नाम पर आर्थिकी को माइनिंग मर्केंटाइल के ढांचे वाली कोयला खदान को पुनर्गठित किया। समय कुछ बदला सो बुद्धिमान पीवी नरसिंह राव की मौन बहादुरी से भारत ने ताजी हवा पाई। डॉक्टर मनमोहन सिंह की दृष्टि विद्वता से वैश्विक राजधानियों में भारत का मान बना। पर हम हिंदुओं का इतिहास तो भयाकुल कौम का है, समर्पण, भूख, भय, भक्ति का है, वह कैसे मिटता? मेरा लिखना इमरजेंसी के समय 1976 से शुरू हुआ है। तब वैश्विक विषयों जैसे सोवियत संघ, शीत युद्ध, अफगानिस्तान आदि पर लिखता था तो साम्यवाद, समाजवाद, गरीबी हटाओ 20 सूत्री कार्यक्रमों से भारत समझ आता था। पूरा ठीकरा नेहरू के आइडिया समाजवाद, गिरगिट नौकरशाही की कोयला खदान पर केंद्रित हुआ। तब भी जाहिर था कि हिंदुओं का वह भक्ति काल है जो 1000 साल की गुलामी से पैदा कायरता का बाई प्रोडक्ट है। इसलिए मेरे लिए 1977 में कांग्रेस की हार और इंदिरा गांधी की जगह निर्भिकता का मंत्र देने वाले मोरारजी देसाई का शपथ लेना मानो क्रांति के क्षण थे। पर उन्होंने भी नेहरू के आइडिया ऑफ इंडिया के ढांचे को नहीं समेटा। उल्टे सदियों से सत्ता के लिए फड़फड़ाती कौम के नए प्रतिनिधियों भुखड़ों में घमासान बना। पहले समाजवादी, फिर कम्युनिस्ट नेताओं की वह तोड़फोड़ व आचरण प्रकट हुआ जिसमें आया राम गया राम भी हुआ, तो बांटो और राज करो की मंडल राजनीति, फिर संघ आडवाणी की कमंडल राजनीति भी खिली। चुपचाप भगवा रंग चढ़ने लगा। बीच में जरूर नरसिंह राव ने अफसरों की दखल घटाई, भारत खुला, पर सत्ता की भूख हड़बड़ी जैसे 1947 से पहले नेहरू गांधी की थी वह भी खुली। मंडल कमंडल के वे नेता जमीनी हल्ला बनाते हुए थे जिससे देश ने चीन के साथ साथ उठने के अवसर गंवाए। कम्युनिस्ट सुरजीत प्रकाश करात, लालू रामविलास आदि प्रगतिशीलता सामाजिक न्याय के हवाले अपने ही समर्थ से बनाई मनमोहन सिंह सरकार की नाक में भी दम किया। कुल मिलाकर आर्थिकी खुली तब भी देश चीन की तरह फायदा नहीं उठा पाया। हाँ, नारायण मूर्ति जैसे कुछ नए उद्यमियों की बदौलत भारत जरूर आईटी क्षेत्र में दुनिया का बैक ऑफिस, आईटी कुलियों का सप्लायर देश बना। मेरा मानना है कि गुलामी के इतिहास जन्य डीएनए से हम हिंदू बुद्धि बल से ज्ञान विज्ञान शोध तकनीक लेखन में कुछ भी मौलिक रचने में समर्थ नहीं है। हमें केवल जुगाड़ आता है, समय रिपीट होता रहता है। अंग्रेजों के समय गन्ना पैदा करने वाले किसान विदेश यानी फिजी, मॉरिशस, सुरिनाम आदि गए। वैसे ही नए मिलेनियम में भारत का योगदान खाड़ी देशों में मजदूर सप्लाई और आईटी कर्मियों की दुनिया की सेवा था। उसी से अमेरिका, पश्चिमी देशों में भारतीयों का जाना हुआ। सोचे प्रवासियों ने जो कमाया वह किसमें जाया हुआ? केरल के मलयाली परिवार की प्रवासी कमाई हो, या पूर्वी यूपी के खाड़ी देशों में गए मजदूरों की कमाई, या बेंगलुरु के आईटी हब में उत्तर भारत की काम कर रही श्रम शक्ति, या बिहार से देश भर में फैले मजदूरों की कमाई, इससे देश की शक्ल दो तरह से बदली है। 2010 के बाद का कथित भारत विकास या तो खपत बाजार बढ़ाने का चक्र लिए हुए है, या टैक्स जीएसटी से सरकार की फिजूल खर्ची जैसे वेतन आयोगों, लुटियन दिल्ली में इमारतें बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर उन्हें क्रोनी पूंजीपतियों को बांट देने का वह दुष्चक्र है जिसके झांसे ललकने घर परिवारों, नौजवान दंपतियों, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, किसान सभी को कर्ज में जीने का आदि बना दिया है। सोचे कभी भारत का गरीब बचत के रिकॉर्ड बनाता था, अब हर कोई कर्जों में डूबा है, खैरात पर जिंदा है। देश में संतुष्ट, स्वपोषक, आत्मनिर्भर केवल वही आबादी है जो कोयले की खान की काली कमाई दलाली से हराम का जीवन जी रहे हैं। विकास के नाम पर कोयले की खान का क्या रूप परिवर्तन है? मशीनें चीन की लग गई हैं। भ्रष्टाचार के भरपूर विकास में दुनिया के नंबर एक हैं। पर दिल्ली हो या झारखंड का निवासी, हर भारतीय धुएं धूल से फेफड़े काले करते हुए है। मजदूर हो, आधुनिक गिग वर्कर हो, सब लाचारी दीनता कर्ज से जीते हुए हैं। पर यह जरूर हुआ है कि सत्ता की काली खान कोयले के काले धंधों ने नए जगत सेठ पैदा किए। वे सेठ जो सस्ता कच्चा तेल खरीदते हैं, कोयला निकालते हैं और पेट्रोल, डीजल, गैस तथा बिजली सब महंगा भारतीयों को बेचते हैं तो विदेशियों को भी बेचते हैं। मुगल अंग्रेज जमाने के जगत सेठ अब उन नए चेहरों में कन्वर्ट है जो न हल्दी लगे न चूना, रंग चोखा आए के नुस्खे में खरापति बनने के वैश्विक रिकॉर्ड बना रहे हैं। सुवैश्विक पैमाने पर भारत की आर्थिकी सर्वाधिक खुले तब भी क्या होना है, पर खुलना मजबूरी भी है। अमेरिका या यूरोप से भारत समझौता ना करे तो सहारा क्या है? भारत किनके बूते दुश्मन चीन और पाकिस्तान से बचेगा? ये वे दो देश हैं जिनकी चिंता में सरकार ने रक्षा बजट में 2.19 लाख करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण खरीदने का फैसला किया। पर क्या सैन्य हथियार खरीदने से चीन और पाकिस्तान डरेंगे? हथियार तो हिंदू राजा रजवाड़े भी रखते थे, उनकी पूजा भी करते थे, मगर खैबर पार से आ रहे 1500 घुड़सवारों के आगे भाग खड़े होते थे। लड़ने की बजाय भागने समर्पण का राजा जुगाड़ तलाशता था। क्यों? जवाब है कौम का कलयुग की काली बुद्धि, काले शनि की छाया में जो जीना है। याद करें मोदी सरकार ने राफेल खरीद कर कैसे सुरमाई झांकी बनाई थी। नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह ने पूजा की, काला धागा बांधा, हुआ क्या? ऑपरेशन सिंदूर के सत्य के लिए वैश्विक रिपोर्ट तलाशी तो मालूम हुआ राफेल का नुकसान। ट्रंप ने क्या बोला? मोदी जी के निजी दोस्त ट्रंप क्या कह रहे थे? तब विमान गिर रहे थे 5-6। जाहिर है संकट गहरा दिमागी है। भयाकुल हिंदू जीवन झूठ की कोयला खदानों में सांस ले रहा है। भीड़ अब सनातनी चरित्र वाली नहीं बल्कि उस कायर कलयुगी जमात की है जो एक सनातनी दंडीधारी शंकराचार्य से सवाल करता है कि साबित करो तुम शंकराचार्य हो। सनातनी परंपरा के उस प्रतीक से सवाल जिसका सत्व तत्व है उठो, जागो और श्रेष्ठ को प्राप्त सत्य को जानो, सत्य में ही जियो। ध्यान रहे जो कौम बुद्धि श्रेष्ठ शुद्ध सत्य लिए नहीं होती वही मनुष्य देश अपने सत्य के बीच दूरी बनाता है और सदैव भय में जीता होता है। तभी मेरा मानना है कि भारत भय बुद्धिहीनता की वह कोयला खदान है जिससे सब कुछ कलुषित है, काली जुबा है, काले जुगाड़ है। इस पॉडकास्ट में बस इतना ही, अगले एपिसोड का करें इंतजार। बहुत बहुत धन्यवाद।